चौबीस से सत्ताईस श्लोक
की आवृत्ति कर रहे हैं। हम सब तरह से हमारी रक्षा करने वाले ये निश्चित हैं, इस जन्म में आपको नहीं पा सकूंगा, परंतु आपके चरणों में मेरी यही प्रार्थना है कि मैं अपने कर्मों के अनुसार जिस बोली में जाऊं वहां आपके भक्तों के साथ मेरी मित्रता हो। शक्ति देह पुत्र स्त्री और देह में न हो, मैं तो पहले से ही संसार में अशक्त हूं। तो प्रसंग में एक बहुत महत्वपूर्ण इतिहास है। सगुना किस प्रभु जिसम ने पूछा कि लीला होनी चाहिए सिद्धांत, उन्होंने कहा सिद्धांत तो हो ही रहा है जो है नहीं, यह कुछ लीला होनी चाहिए। यहां भी सिद्धांत तो आएगा लेकिन इससे अधिक सरस सिद्धांत की बात है। बहुत प्राचीन काल का एक इतिहास है। एक बार देवराज इंद्र का युद्ध हो रहा था वृत्रासुर से, तो इस युद्ध में वृत्रासुर विजयी होने नहीं चाहते थे, वे पराजित होना चाहते थे। पराजित ही नहीं, वे चाहते थे कि उनकी जान मार दी जाए। इंद्र वज्र चलाओ और शरीर छूट जाए, इस प्रकार का अनोखा युद्ध आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि कोई योद्धा अपने प्रतिपक्ष से विनय करे कि तुम मुझे मारो, और वो प्रतिपक्षी संकित हो गया, मार नहीं रहा था। इसमें दो कारण थे, एक तो भगवान इंद्र को संशय हो गया कि वे वृत्रासुर को मार नहीं सकेंगे, और दूसरा बहुत बड़ा भय हो गया वैष्णव अपराध का कि ऐसे महान वैष्णव का यदि मैं वध करूंगा तो पता नहीं मेरी क्या दुर्गति होगी। यद्यपि ऋषियों ने बहुत मुहरा करके प्रार्थना करके भगवान इंद्र को राजी किया था कि आप वृत्रासुर का वध कीजिए। वृत्रासुर वैसे असुर कहे जाते हैं अपने कर्मों के कारण, लेकिन उनका जन्म एक ब्राह्मण को हुआ, ब्राह्मण के द्वारा हुआ था, इसलिए ब्राह्मण थे। उनके भाई विश्वरूप थे उसके पहले। तो इंद्र अपने गुरु का विश्वरूप का वध कर दिए थे, इसके कारण उनका ब्रह्महत्या लगी थी, बहुत घोर ब्रह्महत्या। तो किसी प्रकार अपनी हत्या को उन्होंने चार भाग में बांटा और विनय किया कुछ लोगों से कि ले लीजिए हमारा पाप ले लीजिए। तो चार लोगों ने उनका पाप बांट लिया, वृक्ष, भूमि, जल, स्त्री, चार लोगों ने 25-25% उनका पाप बांट लिया। तब उसके बाद फिर वृत्रासुर हुआ, ये बहुत भयावह था। ऐसा लिखा गया है श्रीमद् भागवत में, जब सब देवता समवेत रूप से आक्रमण किए वृत्रासुर पर एक बार पूरी शक्ति लगाकर, और उनके पास जितना अस्त्र था वो सब एक बार चलाए वृत्रासुर पर। वृत्रासुर बहुत बड़े शरीर वाले थे, तो उन पर जब चलाए सब देवता एक साथ अपना अस्त्र शस्त्र, तो उनके एक बार में ही सारे अस्त्र शस्त्रों को पकड़कर और मिलने की तरह खा गया। हर जितना गदा तलवार या बाण जो कुछ था धनुष समेत छीन करके सब खा गया। जो हथियार खा सकता है तो अब किस चीज से मारा जाएगा? देवताओं के पास अब कुछ भी नहीं बचा। वे तब अब तो वे सोचे कि अब तो मरना ही है, निश्चित हो गया मरना हम लोगों का। पाप तो किए ही थे, ब्राह्मण की हत्या किए थे, उसी के कारण त्वष्टा ने ये पुत्र उत्पन्न किया। त्वष्टा भाई थे इंद्र के, भाई है, लेकिन उनके पुत्र का वध इंद्र ने कर दिया, इसलिए पुनः एक पुत्र उत्पन्न कराए वृत्रासुर। तो बहुत भाई भी तो देवता लोग भगवान की शरण लिए, ये बहुत विस्तार से कथा है। शरण लिए, भगवान से प्रार्थना करने लगे, कहने लगे हे नाथ, जब जब हम पर विपत्ति पड़ी है तब तब आप हमें सहारा दिए। तो शुरू का इतिहास दोहरा रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ प्रलय काल के समय, और बहुत जोर की हवा चल रही थी, आंधी चल रही थी, समुद्र का पानी उद्वेलित हो रहा था, उस समय ब्रह्मा जी कमल पर बैठे हुए थे। इतनी जोर की हवा एक बार चली और समुद्र में इतनी भयावह तरंग उठी कि कमल बहुत आंदोलित हो गया, हिल गया और ब्रह्मा जी गिर गए पानी। ब्रह्मा जी उस समय कोई नहीं था वहां पर, जैसे कोई बच्चा किसी नदी और समुद्र में गिर जाए, उस तरह से ब्रह्मा जी गिर पड़े लहर में। तो हाँ हाँ करने लगे, तो भगवान आकर के उनको पानी से निकाल कर फिर कमल पर बैठे। ये भागवत में इसी स्कंध में कथा है, पूरा स्वयंभूरती इस तरह से याद कर रहे हैं। ब्रह्मा जी तक पर विपत्त कर सकते, अगर उनको भगवान नहीं निकाले होते तो उसी दिन पर मर गए होते। कोई कुछ नहीं है प्रकृति के सामने, वास्तव में भगवान सबके मालिक रक्षक। जब उसके बाद कह रहे हैं कि मनु महाराज जो सत्यव्रत महाराज हैं इस समय, वे प्रलय काल में समुद्र में बहुत भयभीत थे, लेकिन भगवान प्रकट हुए मछली के रूप में और अपने सिंह में वासुकी को रस्सी के रूप में बांध कर और नौका के द्वारा मनु महाराज की रक्षा की। वे भगवान नहीं होते तो सप्तर्षियों के साथ मनु महाराज भी मर गए हैं तो समुद्र में डूबकर। तो इस तरह से जब जब विपत्ति पड़ी है हम देवताओं को, तब तब आप हमारा उबार किए हैं, तो इस वृत्रासुर भयंकर विपत्ति से हमारी रक्षा कीजिए। भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होने पर देवता लोग कहते हैं, हे प्रभु, यदि आपको अच्छा लगता हो तो वृत्रासुर का वध कर दीजिए। लेकिन देवताओं ने सोचा कि अरे भगवान से इस तरह से कहना ठीक नहीं, इसलिए उन्होंने यदि लगा, यदि मानने से पराष्ट्रम जय है, यदि आप चाहते हैं तो वृत्रासुर का वध कर दीजिए, तो भगवान क्यों चाहेंगे? तब देवता लोग माने कहते, देवताओं ने भ्रम कर लिया कि भगवान के अंतर्जामी हैं, जो हमारे हृदय में इच्छा हो जानता है। इसीलिए भगवान ने मानो ये कहा कि क्यों छिपा रहे हैं, जो इच्छा है बतला होता है। उन्होंने कहा कि आप मार दीजिए, यही हमारी प्रार्थना है। यदि लगा करके नहीं बोले। अब भगवान ने कहा कि देवताओं ठीक है, मैं आप लोगों से उपाय बता रहा हूं वृत्रासुर को मारने का। आप बधीची मुनि के पास जाइए, वे बहुत बड़े तपस्वी हैं और भक्त हैं, नारायण कवच का पाठ करने के कारण, दिव्य तप करने के कारण उनके हड्डी में बहुत शक्ति आ गई है। उनको जाकर अस्थि मांगिए और उससे एक अस्त्र बनेगा, उसी अस्त्र से वृत्रासुर का वध हो सकता है। ये अस्त्र ये हड्डी मांगने की कथा भी बड़े विस्तार से है, मैं उधर पीछे नहीं जाना चाहता। इस तरह एक अस्त्र बन गया है दधीची मुनि के अस्थि से, तो उस अमेघ अस्त्र वज्र को लेकर भगवान इंद्र युद्ध भूमि में आए और आप हाथी पर चढ़कर, और फिर से विश्वकर्मा जी ने बहुत सा हथियार बनाया नया देवताओं के लिए, और कुछ उस अस्थि से भी बनाया गया और भी अस्त्र, वज्र मुख्य था, और दूसरे दिन लोहा से सोना चांदी आदि से हथियार बनाया गया। विश्वकर्मा जी तो देवताओं के शिल्पी हैं, तो उनके संकल्प मात्र से सब कुछ बनता है, तो उनको कारखाना खोलकर कोई अस्त्र शस्त्र नहीं बना, संकल्प से सब होता है। तो देवता सभी अपना अपना अस्त्र लेकर अपने वाहनों पर चढ़कर और वृत्रासुर का वध करने के लिए और असुरों का वध करने के लिए जुटे। तो जिस तरह देवता जुटे थे सब, उसी तरह जितने भी असुर हैं वे सब जुट गए, सब जगह से ऐसी गुटबंदी होते, पता लगा कि देवताओं से झगड़ा है तो जितने असुर थे सब वृत्रासुर का साथ दिए। यहां लिखा गया है कई जगह निवात कवच कालके पावलोन, जितने भी पाताल में रहने वाले इधर जितने असुर हैं सब जुट गए, बहुत भयावह युद्ध हुआ। लेकिन उस युद्ध में ऐसा हुआ देवताओं की शक्ति भगवान की कृपा से बहुत बढ़ गई थी, बहुत बलवान हो गए थे, यद्यपि हमेशा हारे हुए थे युद्ध में, लेकिन इस बार भगवान की कृपा हुई और ये लगे मारने असुरों को बुरी तरह से मारे। तो जितने असुर सेनापति थे वे सब युद्ध छोड़कर भाग चले, साधारण सिपाहियों की तो बात ही दूर थी, सब लोग भाग चले युद्ध से, ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये असुर बड़े बलवान थे, हमेशा देवताओं को परास्त किए थे, लेकिन भगवान कभी भी दिन फेर सकते हैं, अपने भक्तों को उन्होंने शक्ति दिया, वे असुरों को मारने लगे, वो भाग चले असुर, तो और सब लोग तो भाग ही रहे थे, जब सेनापति लोग भागने लगे, अनरवा और मोना सौंदर अरिष्ट मेमी विप्रचेती, ये सब नाम हो असुरों के जो श्रेष्ठ हैं, वो भागने लगे तो वृत्रासुर को हंसी आने लगे, अरे ये क्या हो गया, ये तो कभी युद्ध से नहीं भागे, क्या हो गया, क्यों भाग रहे हैं। तो उनका शरीर बहुत ऊंचा था ही, वे जोर से पुकारने लगे, उनकी आवाज बादल से भी अधिक दूर में जाती थी, तो वे कहने लगे नाम रख रख कर, हे पुलोमा, हे अनरवा, हे दिमूर्धा, हे संबर, हे अरुष्टनेमी, हे विप्रचित, तुम कहां भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो। वे लोग कहते हैं दूर से भागते हुए हैं, जीने के लिए भाग रहे हैं, पूछता है कहां भाग रहे, यहां मरे रह करके युद्ध में खड़ा रहने का मतलब है कि अब मरना है। हम लोग तो कभी ऐसा नहीं सोचे थे कि ऐसी भी पराजय हो सकती, यदि हम प्रतिकार करेंगे तो मरना है हमें, इसलिए हम लोग भाग रहे हैं। तो वृत्रासुर जी कहते हैं जातस्य मृत्युर्ध्वं व सर्वतः प्रतिक्रिया जस्यनचे कृपता, हे सेनापति, संसार में जब ब्रह्मा जी मृत्यु बना रहे थे तो मृत्यु को रोकने का कोई उपाय नहीं बनाया, और सब चीज की प्रतिक्रिया बनाए, जैसे भूख लगती है तो भूख की प्रतिक्रिया है कुछ खा लेना, खा लेने के बाद भूख मर जाती है, कुछ रोग है रोगों की प्रतिक्रिया बना दिए, दवा औषधि मंत्र कुछ बनाए, यहां तक कि बुढ़ापा खत्म करने के भी औषधि बनाए हैं। बूढ़ा व्यक्ति युवक हुआ है सुना गया, जैसे चरण ऋषि सौभरी कायाकल्प किया जाता है, लेकिन मरने की प्रतिक्रिया ब्रह्मा जी बनाए नहीं, भूल गए कि क्या हुआ, मरना नहीं रुक सकता है। तो लोग कहे फिर भी हम लोग भाग रहे हैं, हम भागेंगे भागेंगे, तो कहां भाग कर जाओगे, कौन ऐसी जगह है जहां मृत्यु नहीं है, ये बताओ, कौन ऐसी जगह है जहां मृत्यु नहीं है, मरना तो है ही, तो असुर ने कहा कि ठीक है मरना है लेकिन कुछ वर्ष जी करके मरेंगे। तो वृत्रासुर जी कहते हैं लोको जसश्चात यदि यमी यदि सुयोग्य मृत्यु मरने से इस लोक में जस हो कीर्ति हो और परलोक में स्वर्ग मिले तो यह मरने ही बहुत अच्छा। आखिर एक दिन मरोगे लेकिन मरोगे पलंग पर नरक में जाओगे। यदि भागने से कभी नहीं मरते तो मैं भी कहता भाग जाओ आखिर मरना ही है। तो मरोगे बूढ़ा होकर रोगी होकर हॉस्पिटलाइज होकर मरोगे तो उस समय तो नरक निश्चित है। लेकिन आज युद्ध में मर जाते हो तो कीर्ति तो सदा के लिए रहेगी कि वीर था उसने पीठ नहीं दिखाया और उसके बाद स्वर्ग रखा हुआ है ऐसा शास्त्र कहता है। इसलिए और दूसरी बात तो बताया कि कोई ठीक नहीं है कि यही लोग जीतेंगे डटो युद्ध में कभी भी बदल जाती है स्थिति। लेकिन लोग कहे नहीं नहीं ये तो आशा नहीं है कि स्थिति बदलेगी यहां तो मरना ही है। तो वृत्रासुर जी कहता है देखो दो प्रकार की मृत्यु बहुत दुर्लभ है संसार में। एक तो ब्रह्म संधारणा करके अपना शरीर छोड़ना है। ब्रह्म संधारण का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण के रूप गुण लीलाओं को चित्त में याद करते हुए शरीर छोड़ दे तो ब्रह्म संधारणा कहो। वास्तव में भगवान में मन लगा है और इंद्रियां लगी हैं और इस समय शरीर छूट जाए तो जीव सीधे भगवान को धाम में जाता है। आखिर मरना तो है ही बच तो सकता कोई नहीं। इसीलिए जीवन भर प्रिपरेशन किया जाता है तैयारी की जाती है शरीर छोड़ते समय भगवान में हमारा मन लगा रहे तो तभी लगा रहेगा जब हम अभी से लगाना चालू करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे लगाने का प्रयास करना पड़ेगा। जैसे आप लोग संडे को आते हैं इस मंदिर में तो जो आते हैं वो स्वाभाविक चले आते हैं जो नहीं आए होंगे उनको बड़ा जोर लगाकर लाना पड़ेगा। पहली बार वो आते हैं एक अभ्यास हो जाता है भगवान से संबंध हो जाता है तो अपने आप आदमी खींचा हुआ चला। कोई किसी के पास क्यों जाता है कुछ संबंध होता है इसीलिए जाता है ना। दुनिया में आदमी जाते हैं यहां जाए वहां जाए कोई न कोई संबंध होता है। तो जब भगवान से संबंध अपना व्यक्ति देख लेता है तो उनके दरबार में आए बिना नहीं रह सकता। तो अभी से बचपन से ही प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान के साथ अपने संबंध को समझ लेना चाहिए और कृष्ण के साथ अपने प्रेम को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तब अंतिम समय में बिना प्रयास के ही मन और इंद्रियां भगवान में लगी रहेंगी। यदि अभ्यास नहीं है तो बहुत कठिन है मन लगा पाना। जो समझ लीजिए कोई व्यक्ति कभी भी मृदंग नहीं बजाया हो ढोलक नहीं बजाया हो और उसको बीजिए बजाने के लिए और कहिए कि देख देख करके बजाओ वो व्यक्ति देख करके भी नहीं बजा पाएगा। लेकिन जो सीख चुका है मृदंग वो नहीं भी देखेगा परंतु उसका हाथ उसी ताल और राग के साथ चलेगा। ऐसे मृदंग हाथ में उधर भी देखेगा फिर भी इसका हाथ ठीक बजेगा। उसको अभ्यास कहते हैं। तो देखने की जरूरत नहीं है उसकी उंगुलियां अभ्यस्त हैं मन अभ्यस्त है हाथ का अभ्यास हो गया है। तो इस तरह यदि भगवान के दर्शन का सेवा का हम अभ्यास करेंगे तो फिर आगे प्रयास नहीं करना पड़ेगा। फिर हम अपने घर में भी रहेंगे ऑफिस में भी रहेंगे और कदाचित मान लीजिए वहीं पर शरीर छूट जाता है तो राधा गिरधारी जी का स्मरण तो होगा ही भगवान मन में बसे रहेंगे। लेकिन उनको बसाने का दृढ़ अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास की बहुत महिमा है। तो वृत्रासुर जी कहते हैं कि ब्रह्म में मन लगाकर शरीर छोड़ देना यह बहुत दुर्लभ मृत्यु है। तो यह मृत्यु तो तुम्हारे भाग्य में है नहीं कि ब्रह्म ने कहा तुम्हारा मन लगेगा दिन रात शराब और मार काट में लगे हो। असुरों के विषय में अपना विचार देते हैं कि तुम लोग ये आशा नहीं कर सकते हो कि भगवान कृष्ण में मन लगाओगे मरते समय, लेकिन जो भी चांस है कि झगड़ा करके मर करके स्वर्ग चले जाओगे तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है। लौटो लौटो लौटो, यह भी बहुत दुर्लभ मृत्यु है। भगवान ने गीता में कहा है हतोवा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वा भक्ष से नहीं। अर्जुन यदि युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग रखा हुआ है, स्वर्ग जीतोगे, और युद्ध में विजयी हो जाओगे तो नहीं भक्ष से भूमि भोगोगे, मतलब भूमि का उत्पादन भोगोगे राजा बनकर, यह भाव। तो दोनों हाथ में लड्डू, युद्ध सबसे अच्छा है भगवान कहते हैं। मरना भी उसमें बहुत अच्छा है और विजयी होना भी बहुत अच्छा। वृत्रासन ठीक यही बात कहते हैं, और ये तो बल्कि यहां तक कहते हैं निश्चित अगर मरण है इस युद्ध में तो वो मरण जो है तुम्हारे भाग करके जीने की अपेक्षा अच्छा है। ऐसी जिंदगी से ग्लोरियस डेथ, ये महत्वपूर्ण मृत्यु मर लेना चाहिए। लेकिन ये लोग इतना डर गए थे कि कोई नहीं रुका, सब भाग गए, कोई फिलॉसफी काम नहीं मरता क्या न करता, वो लोग भाग गए तो भाग गए, वृत्रासुर की बात नहीं सुनी। फिर भी देवता लोग पीछे से उन पर प्रहार कर रहे थे, तो वृत्रासुर जी को बहुत क्रोध हुआ देवताओं पर, और उन्होंने कहा अरे दुष्कर्मी, जो युद्ध छोड़कर भाग रहे हैं वे तो अपने माता पिता के मल मूत्र है ही, लेकिन तुम लोग भी तो कोई अच्छे व्यक्ति नहीं हो कि युद्ध में भागने वाले पर प्रहार कर रहे हो। ठीक, वे लोग तो गए बीते हैं ही जो युद्ध छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन तुम लोग कौन अच्छा हो कि भागने वाले पर प्रहार कर रहे हैं, यह बताओ कि क्या युद्ध में तुम्हारी निष्ठा है, युद्ध को अच्छा मानते हो? यदि युद्ध को बहुत अच्छा काम मानते हो और हृदय में यदि धैर्य है तो आओ मुझसे युद्ध करो, अपने साथ युद्ध करने के लिए कहो। जय राधा गोविंद, जय जगन्नाथ। यदि वह प्रभने श्रद्धा, यदि आप लोगों का युद्ध में बहुत अच्छा विचार, युद्ध को अच्छा समझते हो और धैर्य है तो मेरे साथ युद्ध करो। इतना कहकर वृत्रासुर जोर से गरजे, इतना जोर से गरजे कि प्रत्येक देव सैनिक पर ऐसा लगा कि वज्रपात हो गए और सब गिर पड़े बेहोश होकर, सभी सेना बेहोश होकर के गिर पड़ी एक इंद्र को छोड़कर। और इसके बाद वृत्रासुर अपने भारी भारी पैरों से लगे राउंड में सेना को, राउंड रहे थे सबके सिर पर पेट पर लात दे रहे थे, लेकिन बल्कि हल्के लात दे रहे थे, मारना नहीं चाहते थे केवल सबको गिरा दिए और चल रहे थे, जान बुझ करके मसलना नहीं चाहते थे, ये सब गिर गए। तो भगवान इंद्र ने देखा कि हमारी सेना को वृत्रासुर राउंड रहे हैं तो वे आए और सामने आकर के कहने लगे, हाँ जब ये राउंड रहे थे तो इंद्र भगवान ने आकर के रोका, और राउंडते समय ही कुछ उनकी बातें हुई, उन्हें रोकने का प्रयास किया, देखा वृत्रासुर ने कि इंद्र आ गए मेरे सामने। संसार में हमारे वैदिक साहित्य में इस प्रकार का युद्ध नहीं हुआ। एक महाभागवत वृत्रासुर एक तरफ से है और दूसरे तरफ भगवान के ही भक्त इंद्रदेव है, दोनों पर भगवान की कृपा है, दोनों पर अनुग्रह है कृष्ण का, लेकिन निश्चित है वृत्रासुर पर अधिक है। परंतु लोक में इसको कोई नहीं समझेगा, दूसरे लोग समझेंगे कि भगवान ने तो वज्र बनवाया आदेश दे करके तो इंद्र के पक्ष में वे हैं और वास्तव में वे इंद्र को स्वर्ग देंगे, तो लगता है कि कृष्ण इंद्र के पक्ष में हैं। लेकिन वृत्रासुर ने स्वयं ही बात किया है इंद्र से, जब देखा वृत्रासुर ने तो इंद्र देव को उकसाने के लिए वे कुछ बात कहने लगे। हाँ, इसके पहले क्या हुआ कि जब ये सेना को रौंद रहे थे तो भगवान इंद्र ने अपनी गदा घुमा करके वृत्रासु पर मार दिया। बहुत जोर से अनेक गदा है, लेकिन वो गदा जब वृत्रासु के पास आई, आने के पहले ही बड़ी फुर्तीले से अपने बाएं हाथ से पकड़ लिए गदा को, और फिर उसने मोशन बना करके और ऐरावत के मस्तक पर मार दिए। वो 28 हाथ पीछे जाकर के हा करके गिर गया हाथी, और भगवान इंद्र नीचे गिर गए। चलाना होता था तो इंद्र पर भी चला सकते थे, लेकिन वृत्रासुर जी इंद्र को मारना नहीं चाहते थे, केवल बल दिखा रहे थे। थोड़ा सा बाएं हाथ से मारा घुमा करके, उनकी गदा इतनी जोर से गदा आ रही थी, फिर भी उसको पकड़ लिए और उसी से मार दिए। हाथी का मस्तक फट गया और वो गिर गया अच्छी घाड़ करके। भगवान इंद्र गिरे तो हाथी कुछ काल के लिए मूर्छित हो गया, फिर भगवान इंद्र अपने दाहिने हाथ से उसके मस्तक को सहलाए तो उनके हाथ से अमृत चूता है। इंद्र के हाथ से अमृत का श्रवण होता है, तो उस अमृत से उन्होंने छू दिया, घाव बिल्कुल ठीक हो गया और हाथी भी बिल्कुल ठीक हो गया। फिर हाथी को खड़ा किए, खड़े हो गए, और अब भगवान इंद्र के मन में बहुत भय हो गया कि इस युद्ध को मैं नहीं जीत पाऊंगा। गदा चलाकर तो देख लिया, अब तो एक ही अस्त्र बचा है, वो है वज्र, और कहीं वज्र भी मारूंगा और उसको यह पकड़ करके कहीं उस पर चला दिया तब तो मेरा मरण निश्चित है। इसलिए अब सशंकित हो गए, यद्यपि उनका पक्ष विजयी है, अब तक सारे देवता विजयी थे, असुर भाग चले थे, लेकिन वृत्रासुर के सामने अब इंद्र बिल्कुल सशंकित हो गए। तो हाथ में वज्र लिए लिए ऐरावत पर चढ़े चढ़े वो विषाण हो रहे थे, अब क्या करें। तो वृत्रासुर जी चाहते थे कि हम शरीर छोड़कर भगवान के धाम जाए, इस शरीर में रहना नहीं चाहते थे, जिस शरीर से भगवान के भक्तों का विरोध करना पड़ रहा था। इतना निर्विवाद है कि सभी देवता भगवान के भक्त हैं, भगवान की आज्ञा से स्वर्ग का शासन करते हैं, सब चलाते हैं, लेकिन इन्हीं भक्तों से द्वेष था वृत्रासुर, इस कारण से वे इस शरीर में नहीं रहना चाहते थे। लेकिन देखे कि इंद्र मारना नहीं चाहते हैं, तो इंद्र को उकसाने के लिए वे बहुत बहुत बातें कहते हैं। बहुत दिनों से मेरी लालसा थी कि तुमको अपने सामने देख, तुम मेरे भाई की हत्या करने वाले हो, अपने गुरु की हत्या करने वाले हो, ब्राह्मण की हत्या करने वाले हो, अरे स्वर्ग ले लो, तुम्हें लज्जा नहीं आती, कैसे मुझको मुख दिखा दिया। ये केवल इंद्र में क्रोध पैदा करने के लिए बोल रहे हैं, और कोई कारण नहीं। जानते हो क्या होगा, आज मैं इस शूल से तुम्हारा मस्तक काट दूंगा और किसी को भी अलाउ नहीं करूंगा तुम्हारा दाह संस्कार करने के लिए, जी खाएंगे तुम्हारे शव को और कुत्ते खाएंगे, कोई भी आया तुम्हारे सामने तुमको बचाने के लिए सबको मार डालूंगा। अरे नीच कहीं के, ऐसा कहने पर ही इंद्र क्रोध करेंगे, अन्यथा वे क्रोध करेंगे नहीं। और फिर कहते हैं, क्या समझते हो कि भगवान तुम्हारे पक्ष में है, तुम यह ख्याल यह विचार छोड़ देना, हमारे प्रभु हम भक्तों के रक्षक होते हैं, वे हम भक्तों को कभी भी बहुत संपत्तियां नहीं देते हैं, नहीं तो संपत्तियों के कारण द्वेष उद्वेग मानसिक चिंता कलह ये सब होते रहते हैं। वृत्रासुर कहते हैं, जिन भक्तों पर वे अनुग्रह करते हैं उनको ये सब स्वर्ग पाताल आदि की संपत्ति नहीं देते हैं, आपको वे देना चाहते हैं। मुझे पता है कि उन्होंने कहा था कि दधीची मुनि की हड्डी लाओ और उससे वज्र बनाओ, वृत्रासुर मरेगा, तो आप समझते होंगे कि वे मुझे मारने का प्लान किए हैं और आपको विजयी बना रहे हैं, लेकिन इंद्र आप पर उनकी कृपा नहीं है उतनी जितनी मुझ पर कृपा है। बहुत सुंदर प्रवचन वृत्रासुर जी किए हैं इस प्रसंग में, अद्भुत। फिर कहते आप चलाइए वज्र, चलाइए, तो माने भगवान इंद्र ने कहा कि ओ मैं जानता हूं गदा की तरह मेरा वज्र भी विफल कराना चाहते हो, मुझे मारने के फेर में पड़े हो। वे कहते हैं नहीं नहीं, आप वज्र चलाइए और मैं अपना मन भगवान शंकरषण के चरणारविंद में स्थापित कर रहा हूं। जिस समय मैं भगवान के चरणों का स्मरण, उनके रूप का स्मरण करता रहूंगा, उसी समय मारिए वज्र और मेरा शरीर गिर जाए, मैं प्रतिकार नहीं करूंगा, आप चलाइए वज्र। तो भगवान इंद्र ने कहा कि कहीं गदा की तरह वज्र भी निष्फल हो जाएगा तब? तो वृत्रासुर जी यहां तक कहते हैं अरे इतना है आप अज्ञ हैं, आप जानते हैं इस वज्र के पीछे किसकी योजना है? भगवान कृष्ण की योजना है। वे प्रकट होकर के कहे हैं कि वज्र बनाओ, हरि का प्लान, उनका विचार कभी विफल नहीं होता है। जतो हरि विजय श्रीस्तः, जहां हरि है कृष्ण है वहीं विजय है। विजय तो आपके पक्ष में निश्चित है देवराज, इसमें संदेह नहीं, आप जीतेंगे, विजय निश्चित है। जतो हरिर विजय श्रीस्तः गुण, कहते जहां हरि है वहीं विजय है, वहीं सब गुण रहते हैं। तो भगवान आपके पक्ष में है इस युद्ध में, तो आप भूल गए कि उन्होंने आपको आदेश दिया था दधीची मुनि की अस्थि मांगने के लिए, आपको उन्होंने आलिंगन किया था, अपनी शक्ति दिया था, तो आप तो निश्चित वध करेंगे। तो यह वज्र विफल नहीं हो सकता है, उस तरह विफल नहीं होगा जैसे एक कृपण से की गई याचना विफल हो जाती है। दृष्टांत तो देते हैं, संसार में कोई आदमी धनी है मान लीजिए, लेकिन कृपण है, धन होते ही वो सोचता है हमारे पास कुछ नहीं है, और करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया है लेकिन सोचता है हमारे पास कुछ नहीं है, मैं तो लाचार हूं, कोई मांग न ले हमसे, और कदाचित कोई मांगने जाए तो उस मांगने वाले की याचना जैसे विफल हो जाती है, उस तरह से आपका वज्र विफल नहीं होगा। ये दृष्टांत दे रहे, आप चलाइए वज्र, फिर भी इंद्रदेव नहीं चला रहे, बारम्बार विनय कर कहते आप जब मेरा मेरे शरीर को मारेंगे तो देख रहे हैं मेरा शरीर कितना बड़ा है, संसार में जितने मांसाहारी जीव हैं सबको मैं फिस्ट दूंगा अपने शरीर, बहुत बड़ा शरीर था वास्तव, भूत बलिन विधाया ये शब्द है, मैं जीवों को भोजन दूंगा और आत्मा से मैं कहां जाऊंगा, शंकर समस्त चरण अरविंद, मैं भगवान की सेवा में उपस्थित होऊंगा। पहले भी पार्षद रह चुके हैं, पार्वती जी के साथ से आए हैं, तो वही सुख याद आ रहा है, मैं अपने प्रभु के चरण में जाऊंगा, मेरा देह जाएगा अन्य जीवों को तृप्त करने में, उनके पेट में जाएगा और आप स्वर्ग के राजा बनेंगे, सब काम सध जाएगा, क्यों नहीं चला रहे हैं। भगवान इंद्र तो इस उक्ति को सुन करके और मुग्ध हो रहे थे, सुनना चाहते थे रियली, उनके मन में आ रहा था कि इतने बड़े वैष्णव को मैं मार दूंगा तो इस तरह की सुंदर बात कौन सुनाएगा। तो युद्ध देने में आस्वादन कर रहे थे और नहीं चला रहे थे, तो अंत में वृत्रासुर जी कहते हैं सुरेश कस्मान नहीं नी वज्रम पूरा स्थित वैरी मयम, हे सुरेश आप वज्रम कथन नहीं से क्यों नहीं वज्र चला रहे हैं? अरे मैं आपका प्रसिद्ध वैरी हूं, याद है मैं आपके वैरी के रूप में जन्म लिया हूं, सामने हूं और आपका वज्र अमोघ है, अब इससे अच्छा चांस आपको क्या मिलेगा, कहीं मैं भाग जाऊंगा इधर उधर तो मुझे नहीं मार पाएंगे, आपके सामने उपस्थित हूं, प्रतिकार भी नहीं कर रहा हूं, चलाइए वज्र। लेकिन भगवान इंद्र भी तो एक बहुत बड़े भक्त हैं, कैसे चला दे, वे नहीं चलाना चाहते थे। दो बात का भय, एक तो वैष्णव अपराध जीवन में, साधारण ब्राह्मण को ही मारने पर इतना बड़ा पाप लगा था, तो एक वैष्णव को मार दूंगा तो मेरी क्या गति है। तो ऐसा विकट युद्ध लड़ने, युद्ध करने का अवसर इंद्रदेव को कभी नहीं मिला था। लेकिन ये भी बात हो जाते हैं, समस्त देवता और ऋषि मिलकर इनसे रिक्वेस्ट किए थे या आप मारिए मारिए उसको मारिए, तो इंद्रदेव ने कहा था कि विश्वरूप के वध का मुझे पाप लगा, तो किसी तरह मैं चार भाग में उस पाप को बांटा और कृपा करके स्त्री वृक्ष आदि ने स्वीकार किया, यदि मैं वृत्रासुर जैसे महाभागवत का ब्राह्मण का वध कर दूंगा तो फिर मेरा पाप नहीं कट सकता है। ऋषियों ने क्या कहा था? अरे आप बात करते, वृत्रासुर खल है, वास्तव में सारा जगत तबाह हो गया था उससे, वो खल है, वो दुष्ट है, ब्राह्मण है तो क्या, वैष्णव है तो क्या, आप मारिए, पाप तो लगेगा जरूर, हम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग अश्वमेध यज्ञ करेंगे, और अश्वमेध यज्ञ करके तो व्यक्ति जगत की हत्या करके ही मुक्त हो सकता है, फिर एक खल का वध करने से क्यों नहीं आप मुक्त हो जाएंगे, तुम खल प्रहार ऐसा कहते हैं। जगत में जितने जीव हैं, ब्राह्मण आदि सब, सबको कोई कत्ल कर दे और फिर भी भगवान का भक्त हो जाए तो सारा पाप कट जाता है, वो लोग बताए, तो फिर एक खल को मारने से क्या पाप लगेगा? यदि आप मानते हैं पाप लगेगा तो हम लोग अश्वमेध यज्ञ करेंगे। ये देखिए सातवां नाम अपराध, अब नाम के बल पर पाप करा रहे हैं। यज्ञ करेंगे, कीर्तन कराएंगे, आपका पाप बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, अब चिंता मत कीजिए। तो क्या करें, जगत के ईश्वर हैं, हित करने के लिए सबका भगवान इंद्र ने स्वीकार कर लिया, वो नहीं चाहते थे, जब सब लोग आग्रह कर रहे थे तो ये वज्र लिए ही थे, अंदर भगवान ने भी परमिशन दे दिया कि ठीक है मारो, तो भगवान भी कह दिए, देवता भी कह दिए, इसलिए सामने खड़े हैं। लेकिन आज जब सामने वृत्रासुर की बात उन्होंने सुना तो फिर भी उनका हृदय बदल गया कि नहीं मारूंगा, जो कुछ हुआ सो हुआ लेकिन नहीं मारूंगा। वो नहीं मार रहे थे वृत्रासुर को, तो उसी समय वृत्रासुर जी के मन में यह बात आई कि मैं क्यों इंद्र से विनय कर रहा हूं, मैं क्यों नहीं अपने प्रभु से ही कुछ कहूं। तो उसी समय वे चार श्लोक बोले हैं, वैष्णव समाज में इसको चतुर्श्लोकी कहा गया है, जैसे भागवत में द्वितीय स्कंध में चतुर्श्लोकी है अहम एवा समय वगैरह, गीता में चतुर्श्लोकी है अहम सर्वस्य प्रभो, उसी तरह यह भी एक चतुर्श्लोकी है। तो वृत्रासुर उस विकट युद्ध भूमि में जहां मार काट मची है, मैं भयंकर युद्ध हो रहा है, लेकिन उनका मन इतना दृढ़ कृष्ण में लगा है, इंद्र भगवान हाथी पर हैं, बैठे हैं, चारों तरफ सैनिक खड़े हैं देवता, और वृत्रासुर भगवान कृष्ण के तरफ मुख करके, मतलब मन ही मन, और कहते हैं अहम हरे तौ पादैक मूला दासान दासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। हे हरे, हे कृष्ण, मैं फिर जन्म लू तो आपके दासों के दासों का दास बनू, पुनः बनो, भूया शब्द कह रहे भूया, अहम हरे तो पादे कमूल दासानुदासो भवितास्मि भूया, जैसे मैं आपके भक्त नारद जी का दास था, अंगिरा जी का दास था, तो पुनः मैं आपके भक्तों के दासों के दासों का दास बनू। वृत्रासुर जी के मन में एक बहुत बड़ा अफसोस हो रहा है कि वे सात दिन में ही भगवत पार्षद हो गए थे, भगवान का पार्षद हो गए और भगवान की डायरेक्ट सेवा उनको मिल गई। हुआ क्या कि उनको थोड़ा थोड़ा अहंकार आ गया कि मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूं, इसीलिए माता पार्वती की हंसी कर दी। अब याद आ रही है बात तो कहते हे प्रभु, मैं फिर वैष्णव बनू लेकिन आपके दासों के दासों का दास बनू। डायरेक्ट दास बनने की इच्छा नहीं है, मैं आपके दासों का दास बनू और फिर बनू, ये अभिलाषा है। दास बनकर के क्या करने चाहते हो? तो कहते हैं मना है स्मरे तासुपतेर गुणांश, तो हे प्राणनाथ, मेरा मन आपके गुणों का स्मरण करे, मेरी वाणी उन गुणों का नामों का कीर्तन करे, और कर्म करो तो काय, यह मेरा काय मेरा देह है, आपकी सेवा में लगा रहे। केवल यही नहीं कहते हैं कि मैं मेरी वाणी आपके नाम का उच्चारण करती रहे, मन आपके गुणों का स्मरण करे, आपकी विशेषताओं का, सौंदर्य आदि का, और मेरी वाणी उन्हीं को बोलती रहे और मेरा शरीर आपकी सेवा में लगा रहे। कर्म करो तू काय। हमने यहां देखा भी है और बारंबार सुना भी है, इस मीरा रोड मंदिर में बहुत से भक्त हैं, कांग्रेगेशन हैं, जो अपना मन बाड़ी भगवान में लगाए, अपना धन लगाए, इसके साथ ही साथ काय अपना शरीर भी बहुत लगाए। शरीर जैसे साधारण काम मजदूर का जो होता है वो भी किए हैं सभी लोग, और बहुत काल तक। वास्तव में देह इसी के लिए है, शरीर तो एक दिन चला जाएगा, लेकिन शरीर से भी जिन लोगों ने मेहनत किया है और वैसे रोज रोज कर ही रहे हैं, जप करते हैं इसमें शरीर लगता है, भगवान के लिए कुकिंग करते हैं, कीर्तन करते हैं, खड़ा होकर नाचते हैं, यह भी शरीर ही लग रहा है। और जो मैनुअल सेवा है, शारीरिक सेवा, उसका भी बड़ा महत्व है। वृत्राश्र कहते हैं कि हे हरे, मैं फिर जब जन्म लूं तो आप इस शरीर से आपकी सेवा करूं, वाणी से आपका कीर्तन करूं और मन से आपका स्मरण करता रहूं। इसके अलावा संसार की मैं एक बात नहीं बोलूं, न एक चीज सोचूं और न इस शरीर से मैं दूसरे की सेवा करूं। आपकी सेवा करना चाहता हूं, ये मनोरथ हो रहा है। तो किस तरह से करना चाहते हो और किस तरह की विकलता इनको हो रही है, ये कह रहे हैं। अजात पक्षाइव मातरम खगः स्तन्यं यथावत्सतरः सुधार्तः। इसके पहले बोल रहे हैं, न नाक पृष्ठम न पारमेष्ठ। भगवान श्रीकृष्ण ने मानो कहा इनके ध्यान के आवेश में कि वृत्रासुर तुम क्यों मरना चाहते हो, शरीर क्यों छोड़ना चाहते हो, मैं तुमको स्वर्ग दे देता हूं, राज्य करो। तो कहते हैं मैं, हे सर्व सौभाग्य निधे, मैं आपकी सेवा को छोड़कर, आपको छोड़कर स्वर्ग नहीं चाहता हूं। आप साथ में रहें, आपकी सेवा करूं, स्वर्ग दीजिए चाहे नरक दीजिए, कुछ भी करूं, कि आपको छोड़कर मैं स्वर्ग नहीं चाहता हूं, और न तो पाताल की संपत्ति चाहता हूं, न उस पृथ्वी का सम्राट बनना चाहता हूं, और न तो ब्रह्मा जी का पद चाहता हूं, न आठों सिद्धि चाहता हूं और न मुक्ति चाहता हूं। समंजस तो विरह ये कांक्षा, आपको छोड़कर के मैं ये कुछ नहीं चाहता हूं। और फिर दृष्टांत दे रहे हैं कि किस प्रकार मेरा मन आपसे मिलने के लिए विकल है। बहुत सुंदर तीन तीन दृष्टांत देकर के वृत्रासुर कहे हैं, अजात पक्षाइव मातरं खगः स्तन्यं यथावत् सतरः क्षुधार्तः प्रियं प्रियेव दुषितं विषण्णा मनोरविन्दाच्छिद्रेक्षते त्वाम्। हे कमल नयन, हे कमल लोचन, आपको देखने के लिए मेरा मन छटपटा रहा है, आपसे मिलने के लिए मेरा चित्त छटपटा रहा है। युद्ध भूमि है, युद्ध चल रहा है। ये प्रेयर वृत्रासुर जी किसी टेम्पू में नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का तो मन मंदिर में भी एकाग्र नहीं हो पाता है, और युद्ध छिड़ जाए मार काट, वहां कहां से मन भगवान में रह पाएगा। लेकिन वृत्रासुर कितने महान थे, कितना उनका मन सुनिश्चित था। मेरा मन आपको देखने के लिए छटपटा रहा है, मैं छटपटा रहा हूं ये न कहकर कहते हैं मेरा मन छटपटा रहा है। अब मैं कैसे समझाऊं इसको, जैसे गोपीजन कहते हैं उद्धव जी से, उद्धव जी आप जो बातें कहते हैं कृष्ण का ध्यान करो चिंतन करो तो ठीक है, हम तो मन को समझा देते हैं, मन चिंतन करता है, देखता है कि बांसुरी बजा रहे हैं, हमारे साथ रास कर रहे हैं, तो मन को तो सुविधा है, लेकिन अब हम आंख को कैसे समझाएं। व्यापक ब्रह्म सबय थल पूरन है हमहू।
हम ही पहचानते, हम जानते हैं कि ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है। पर बिना नंदलाल बिहाल सदा हरिचंदन ज्ञान ही ठानते हैं, लेकिन हमको ब्रह्म से कोई तात्पर्य ही नहीं है, हम तो नंदलाल के बिना सदा बिहाल रहते हैं। तुम उद्धो ये है कहिए उनसो, हम और कछो नहीं जानती हैं, पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती। अब जाकर उनसे कह दीजिए बेचारी सब तरह से सुखी हैं, लेकिन उनकी आंखें बहुत दुखी हैं, आप जाइए आंखों को दर्शन दे दीजिए, मिल लीजिए, तब आंखें सुखी हों। तो हम कैसे समझाएं आंखों को? तो इस तरह से वृत्रासुर कह रहे मेरा मन आपको देखने के लिए विकल हो रहा है, मतलब मैं विकल हो रहा। किस तरह से? अजात पक्षा इव मातरम खगा, जैसे खगा पक्षी के पंखहीन बच्चे अपने नीड में पड़े रहते हैं, घोंसला में पड़े रहते हैं। आपने देखा होगा, विशेष गांव के लोग तो जरूर देखे होंगे, हम लोगों ने तो हजारों बार देखा है, छोटे छोटे बच्चे घोंसला में रहते हैं, नीड कहते हैं संस्कृत में, तो उनके पंख नहीं उगे रहते हैं, उनका भोजन माँ के कृपा पर आधारित रहता है। वो पक्षी जुगल उड़ कर जाते हैं कहीं, और कहीं से कीट या कुछ चीज लाते हैं, कोई छोटा छोटा कीड़ा पकड़ कर लाते हैं, कुछ अन्न का दाना लाते हैं और ला करके बच्चे के मुख में देते हैं। वो उड़ करके अपने घर से बाहर नहीं जा सकता, अगर उड़ने का प्रयास किया तो वहीं गिर जाएगा, बाहर जा नहीं सकता। कितनी भी भूख लगी हो लेकिन उसे माँ की कृपा पर ही रहना होता है, उड़ करके जा नहीं सकता। तो क्षुधार्ता अजात पक्षा इव मातरम खगा, जैसे भूख से व्याकुल होकर पक्षी के पंखहीन बच्चे अपने माता पिता की बाट देखते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कब आएंगे हमको चारा देंगे, उसी तरह से मेरा मन आपके लिए विकल हो रहा है। मैं आपको नहीं पा सकता, मुझे पाख नहीं, इस दशा मैं साधनहीन हूं, इसको कह रहे हैं। आप हमको दर्शन देना चाहें, आना चाहे तो आप पर तो कोई बाधा नहीं है, आप तो कहीं भी आ जा सकते हैं, आपकी तो सवारी गरुड़ जी इतने बड़े हैं कि आपको तो कोई दिक्कत नहीं, आपका तो पेट्रोल भी खर्च नहीं होता है कोई कष्ट नहीं है आपको, लेकिन मैं यदि आपके पास आना चाहूं तो मैं तो प्रकृति में हूं, माया के द्वारा बांधा गया हूं, मैं कैसे वैकुंठ आ सकता हूं? तो मैं पंखहीन हूं, साधनहीन हूं। तो पक्षी के बच्चे से अपनी तुलना कर रहे हैं। वास्तव में कोई भी जीव अपने साधन से, अपनी शक्ति से भगवान को नहीं पा सकता है, वो तो कुछ ऐसा करेगा जिससे कि भगवान द्रवित हो जाए और वही कृपा करके आएंगे, तो हम लोगों में क्या शक्ति? बच्चे पक्षियों के होते हैं, हमने देखा है, उसकी माँ चाहे उसके पिता आकर के बैठते हैं कुछ दूर पर और आहट मिल जाती है, आवाज मिलती है कि वे आ गए हैं, तो अपना चोंच खोल करके चे 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 करने लगते हैं। और कभी कभी तो हवा चलती है और वृक्ष के पत्ते भी खरखर करते हैं, तो वो समझते हैं पक्षी की माता पिता आ गए, तो उनकी आवाज सुनकर पत्ते की खरखराहट से भी चोंच फैलाने लगते हैं, ऐसा हम लोगों ने देखा। और कभी कभी ऐसा भी हमने किया है कि पक्षी के बच्चे को पकड़ करके और कुछ दूर पर ऐसे आवाज करते हैं तो चोंच फैलाते हैं, माँ आ गई कुछ खाने को दे, ये खा लेते हैं। लेकिन अगर माँ न आ रहे, पिताजी न आ रहे तो बेचारे भूख से मर जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, और भी उल्लू आदि से रक्षा करते हैं, कई तरह के पक्षी हैं जिनसे पक्षियों को भय रहता है, पक्षी के बच्चे को खा जाते हैं, लेकिन जब पक्षी रहते हैं तो वे चोंच से मारने लगते हैं दूसरे पक्षी को। कमजोर पक्षी भी लड़ते हैं, हल्ला करते हैं, चे चे करते हैं कि हमारे बच्चे को कोई खाने न पाए, इस तरह रक्षा करते हैं, खिलाते हैं। फिर वृत्रासुर जी ने सोचा कि ओहो, मैं तो दृष्टांत ऐसा दे दिया कि इसमें केवल अपना स्वार्थ है, पक्षियों के पक्षी के जो बच्चे होते हैं वे माँ के लिए व्याकुल नहीं होते हैं, माँ से जो वस्तु आएगी उसके लिए व्याकुल रहते है ना। माँ कीट पतंग लाएगी, अन्न का दाना लाएगी और जब खा लेते हैं तो उनकी उत्कंठा शांत हो जाती है। तो देखा गया कि यह जो उनका प्रेम है अपने माँ के प्रति वो स्वपाधि है, उपाधि है। उपाधि क्या है? वो भोजन, भोजन के लिए माँ की प्रतीक्षा करते हैं और भोजन मिल गया तो उत्कंठा नहीं रहा। इसलिए धृतराष्ट्र का मन असंतुष्ट हो गया, वे भगवान का दर्शन चाहते हैं, उनसे भेंट करना चाहते हैं, अपने किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं। तब उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया, वत्स तरह क्षुधार्ता, जैसे गाय के छोटे छोटे बच्चे, नए जन्मे हुए बच्चे खूंटे में बंधे रहते हैं घर पर और गाय चरने के लिए सिवान में या वन में जाती है तो वे माँ की प्रतीक्षा करते हैं, बाएं बाएं करते रहते हैं, माँ कब आएगी, दूध पिलाएगी, हमें चाटेगी, सहलाएगी। वो तो बेचारे बंधे रहते हैं, वो जा नहीं सकते। माँ जब आएगी तभी वो पी सकते हैं। तो क्षुधार्ता है, भूख से व्याकुल होकर बाएं बाएं करते रहते हैं। तो हे नाथ, वही हमारी दशा है, मैं तो कर्म बंधन में बंधा हूं, यदि आप नहीं आएंगे, आप नहीं दर्शन देंगे तो मैं अपने प्रयास से आपका दर्शन नहीं पा सकूंगा। यह दृष्टांत दिया वृत्रासुर जी ने, तो कुछ कुछ उनका मन अस्वस्थ हुआ क्योंकि पक्षी में और गाय में उन्होंने मिलान किया। पक्षियों के बच्चे पक्षी से चाहते हैं, पक्षी को नहीं खास चाहते हैं, पक्षी को भी चाहते हैं लेकिन पक्षी से, अपने माँ से वे कीट पतंग चाहते हैं। उड़ने वाले उस जीव को पक्षी इसलिए कहा जाता है कि उसको पक्ष होता है, पंख, पंख वाले पक्ष या पंखी हिंदी में कहते हैं। तो देखा गया कि माँ के शरीर से बाहर की वस्तुओं को ये चाहते हैं, पक्षियों के पंखहीन बच्चे, लेकिन गाय का जो बच्चा होता है वो माँ से बाहर की वस्तु नहीं चाहता, उसके शरीर में जो वस्तु है उसको चाहता है। तो यह दृष्टांत कुछ सुपीरियर है, लेकिन फिर भी वो बछड़ा दूध दूध पर ही ज्यादा ध्यान रखता है, दूध की कामना उसे होती है, माँ की कामना उसे बहुत नहीं होती है, रहती है, वो चाहता है कि माँ मुझे चाटे सहलावे, और वो अभी माँ को चाटता है कभी कभी। लेकिन इतनी विशेषता है कि गाय का संबंध, बछड़े का संबंध गाय के साथ है तो गाय के देह से संबंध है, गाय के देह से बाहरी वस्तु से संबंध नहीं, इसलिए यह दृष्टांत सुपीरियर हुआ। परंतु फिर भी धृतराष्ट्र का मन संतुष्ट नहीं हुआ, तो तीसरा दृष्टांत देते हैं कि हे नाथ, जैसे प्रिया पतिव्रता पत्नी परदेश में गए हुए अपने प्रियतम पति की बाट देखती है और सोचती रहती है कि वे परदेश में कैसे होंगे, कौन बनाकर खिला रहा होगा, कोई उनको सुख देने वाला नहीं होगा, कब वे घर में आएंगे, जब घर में आएंगे तो मैं उनके लिए प्रसाद बनाऊंगी, उनका चरण दबाऊंगी, उनको पंखा झलूंगी, सब तरह से उन्हें सेवा करके सुखी करूंगी, वे बड़े देश में दुखी होंगे, ये होंगे वो होंगे। तो जैसे रात दिन सोचा करती है अपने पति के विषय में और सेवा करने के लिए, उनको सुख देने के लिए, इसी तरह से हे प्राणनाथ, हे कृष्ण, मैं बहुत बेचैन हूं आपसे मिलने के लिए। तो यह दृष्टांत देने के बाद वृत्रासुर का मन खुश हो गया, क्योंकि एक पतिव्रता पत्नी अपने पति से अपेक्षा नहीं करती है, वह सेवा करना जानती है, वह सेवा है उसका धर्म, वो यही करती रहती है। उसकी जो आवश्यकता होती है वो तो पति स्वयं ही पूरा करता है, लेकिन उसकी जैसे लालसा होती है कि मैं पति से मिलूं, उनकी सेवा करूं, सुखी करूं उनको, तो इसी तरह से मेरा मन बेचैन हो रहा है कि कब आपकी सेवा करूं, कब आपके लिए माला गुथूं, कब आपके लिए कुकिंग करूं, कब आपको पंखा झलूं, चरण दबाऊं, इस तरह से मेरा मन बेचैन हो रहा है। यह दृष्टांत जब वृत्रासुर जी देते हैं तो उनका मन संतुष्ट हो गया, लेकिन फिर मन में आया कि अरे मैं इतना दुर्लभ मनोरथ कर रहा हूं, क्या ये कभी संभव है कि मैं प्रियतम कृष्ण को पा सकूंगा? नहीं, मैं खल हूं, मैं महापापी हूं, भक्तों को सता रहा हूं, देवताओं में जन्म लेकर भी असुरों के साथ मेरा मेल है। अगर भगवान के भक्त नहीं होते इंद्र, तो इंद्र को वे क्यों दर्शन देते और क्यों वज्र बनाने के लिए कहते? तो मैं तो खल हूं, मैं पापी हूं और मनोरथ कैसा कर रहा हूं कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं निश्चित भगवान को नहीं पा सकूंगा। तो मन में आया भाव कि मुझे कई जन्म तक भटकना है संसार में, तब भगवान से अंतिम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मैं जानता हूं मैं आपको नहीं पा सकूंगा, लेकिन अपने कर्म के अनुसार मैं जहां भी जन्म लूं तो मेरी आसक्ति, मेरा प्रेम आपके भक्तों से हो, यही मांग कर रहे हैं। मैं आपको तो पा नहीं सकूंगा, लेकिन आपके भक्तों के साथ मेरे मित्रता रहे। और इसके साथ ही साथ निगेटिव भी बता रहे हैं कि देह में और आत्मा में, आत्मज में, देह में और पुत्र में, स्त्री में और घर में मेरी कभी आसक्ति न हो। आसक्त चित्तस्य आसक्ति न हो, मैं तो पहले से ही आसक्त हूं, मेरी आसक्ति घर में, पुत्र में, धन में न हो, आपके भक्तों में मेरी आसक्ति हो। तो यह श्लोक मैं पढ़ा था और इसी पर कुछ आप लोगों को संदेश देना चाहता था। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति अपने देह में, देहज में मतलब पुत्र में, पत्नी में और घर में आसक्त है। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसका अनुभव हम लोगों को नहीं है, है ना? कम हो या अधिक हो, लेकिन आसक्ति है सबकी। बहुत प्रेम होता है अपने देह से उत्पन्न परिवार में, स्वाभाविक स्नेह होता है, ठीक वही स्नेह भगवान के भक्तों से होना चाहिए, तब भगवान में प्रेम बढ़ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो आप सबसे हमारी यही प्रार्थना है कि इन श्लोकों के आलोक में, इनके सहारे हमको सीखना चाहिए भगवान के भक्तों से प्रेम करना। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसको दे करके भक्तों के ऋण से उतरा जा सकता, जो किसी को भगवान की भक्ति करने की प्रेरणा देते हैं, स्वयं आचरण करके, परिश्रम करके, कीर्तन करते हैं, प्रवचन करते हैं, ज्ञान दे रहे हैं और मंदिर बना करके, मंदिर में भगवान के दर्शन की सुविधा मिलती है और प्रसाद होता है, ये सब ऐसे कार्य हैं जिससे कृष्ण प्रेम बढ़ता है। अतः भक्तों के साथ अधिक से अधिक समय बैठना, उनसे मिलना, उनकी सहायता करना, यही धर्म है। तो परिवार में जितनी आसक्ति है, कम से कम उतनी आसक्ति भक्तों से होनी चाहिए, कम से कम उतना होना चाहिए और दिन पर दिन बढ़ाना चाहिए। कई ऐसे लोग होते हैं, मैंने सुना है, कभी कभी मंदिर नहीं आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे मंदिर नहीं आते हैं वैसे अपने घर छोड़कर भी भाग जाए वृंदावन, ऐसा नहीं होता है। मंदिर छोड़ देते हैं लेकिन परिवार नहीं छूटता है। बहुत बड़ा बंधन है इस देह का। यदि देह आत्मा नहीं है, आत्मा है दूसरा और आत्मा के साथ ही है विष्णु के जन वैष्णव, तो उनके साथ बैठना, अपना दुख सुख कहना, उनका दुख सुख पूछना, और एक वैष्णव समुदाय है उसकी कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं, योजनाएं होती हैं, तो जितना हो सके, जितनी शक्ति हो सके उस योजना में मदद करना, साथ देना, यही वास्तव में एक स्थायी कीर्ति होती है। नहीं तो आदमी सब कुछ छोड़ करके ही जाएगा, कुछ लेकर नहीं जाएगा। हम लोग तो सहायता करते ही रहते हैं, किसी न किसी की मदद तो करते ही रहते हैं जीवन में, तो क्यों नहीं ऐसे लोगों की मदद की जाए जो वास्तव में जगत के हितकारी हैं, भगवान के भक्त है। तो ऐसे भक्तों से प्रेम बढ़े और एक दूसरे के गलतियों को क्षमा करते हुए, सहते हुए और एक मत होकर राधा गिरधारी जी की सेवा आप लोग करें, यही मेरी प्रार्थना है। और ऐसे विचार भी बदलते रहते, कभी कभी ऐसे समय आएंगे जब कभी भक्ति से मन थोड़ा हटेगा, तो उसी के लिए ये सब आयोजन किए जाते हैं। विशेष करके श्रीमद् भागवत सप्ताह का प्रभाव देखा गया है, कि छोड़ी हुई भक्ति, सुखी हुई भक्ति फिर हरी भरी हो जाती है। और वैसे जैसे संडे का प्रोग्राम है, यदि मान लीजिए किसी की भक्ति सुख रही है तो संडे के प्रोग्राम में आवे और प्रोग्राम में कुछ कोशिश करके विशिष्ट भक्तों के साथ बैठ, उनके मुख से कृष्ण कथा सुने, तो भक्ति फिर हरी भरी हो जाती है। एक घंटे में भी, 10 मिनट में भी हो सकती है। और श्रीमद् भागवत की कथाएं तो वो तो सावन भादों का महीना है, इससे तो हरा हो ही जाना है। आज भी वहां कथा है, इसलिए मैं यहां विराम दे रहा हूं। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।